अरमान आस्था की ओर एक टक देखता हुआ शीघ्र ही अपने जिम रूम की ओर जाने लगा। अरमान के कमरे से बाहर जाने के बाद आस्था तुरंत बाथरूम में चली गई और सबसे पहले नहाना शुरू कर दिया। बाथरूम में जाते ही आस्था ने शीघ्रता से नहाना शुरू कर दिया था। उसे अरमान का डर सता रहा था कि कहीं वो मॉन्स्टर जिम से जल्दी वापस ना आ जाए। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। जिस तरह से वो अरमान के साथ चिपक कर सो रही थी, उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसे बार बार डर सता रहा था कि अरमान बेफिक्र होकर सोने की क्या सजा देगा। फिर आस्था ने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उसके पास केवल 2-3 जोड़ी कपड़े थे जो वो अपने मामा की बेटी की शादी में लेकर आई थी। शीघ्र ही आस्था आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को जल्दी जल्दी संवारने लगी। वो सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द तैयार होकर इस कमरे से निकलकर नीचे हॉल में दादाजी के पास जाना था और सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार करना था। तैयार होने के बाद उसने अपने कान्हा की को याद किया। वो आज उसके साथ किसी तरह की कोई भी गड़बड़ ना होने दे और हर गलती होने से उसे बचा ले। बस यही सोचते हुए आंखें बंद करके भगवान जी की प्रार्थना करते हुए वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। ठीक उसी समय अरमान अपना जिम कंप्लीट करने के बाद दरवाजा खोला और कमरे में आने लगा। ठीक उसी समय आस्था जो आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी, उन दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। आस्था गिरने लगी तो अरमान ने तुरंत उसे संभाला। अरमान का एक हाथ आस्था के भीगे हुए बालों में उलझा हुआ था, दूसरा उसकी पीठ पर, और कुछ पल वो आस्था की ओर देखता रहा। आस्था ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने अरमान सिंघानिया का हैंडसम चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें आस्था को देखकर आग उगल रही थीं। आस्था अरमान की आंखों की तपिश अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी और वो मन ही मन सोचने लगी, क्या भगवान जी, अभी अभी तो आपसे प्रार्थना किया था कि मुझे आज हर तरह के लफड़े से दूर रखना, और आपने सुबह सुबह हमें इस मॉन्स्टर से टकरा दिया। अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती हो? अंधी हो क्या तुम? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? आस्था घबराकर बोली, वो मैं बस, आस्था मैं ही करती रही। वो चाहकर कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अरमान आस्था की मैं सुनकर चिढ़ गया और उसने तुरंत आस्था को छोड़ दिया। आस्था अपना संतुलन नहीं बना पाई और पेट के बल गिर गई। आस्था की कमर में काफी ज्यादा चोट लगी थी। ये मॉन्स्टर हमारी जान लेने पर क्यों तुला हुआ है, आस्था ने मन में सोचा। लेकिन अरमान ने केवल एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर तुरंत कमरे में अंदर चला गया। अरमान के जाने के बाद आस्था दर्द से कराहा उठी। ओए माँ, मर गई मैं तो, कितनी जोरों से लगी है मुझे। अगर इस राक्षस को हमें गिराना ही था तो इसने हमें थामा ही क्यों? पहले क्यों बचाया इसने हमें? क्या भगवान जी, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो यार? ऐसे तो मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया है अपनी जिंदगी में। आस्था की आंखें भर आईं। फिर खड़ी होकर उसने अपनी कमर को रगड़ा और धीरे धीरे नीचे हॉल की ओर जाने लगी। वो इस वक्त अरमान का फिर से सामना करने के मूड में नहीं थी। वहीं अरमान गुस्से से अपने कमरे में चला गया और अचानक उसकी निगाह अपने भीगे हुए हाथों पर गई। उसे तुरंत ही आस्था के साथ वो पल याद आ गए जब उसने आस्था को पकड़ा था और उसके गीले बालों में उसके हाथ उलझे हुए थे। अरमान ने गुस्से से उस हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा और खुद से बोला, नहीं, मुझे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। इस लड़की को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। मेरे आसपास कभी कोई लड़की नहीं रहनी चाहिए। ये सब सोचते हुए अरमान गुस्से से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। दूसरी ओर आस्था को पीछ में अभी भी काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो थोड़ा झुककर चल रही थी, लेकिन दादाजी को देखकर वो थोड़ा सीधा हो गई। जल्दी से दादाजी के पास जाकर उसने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया। दादाजी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, आप ठीक तो है ना बेटा, और अरमान ने आपको कुछ कहा तो नहीं ना? दादाजी के मन में ये बात चल रही थी कि अरमान आस्था को किसी तरह से परेशान ना करे और उसे कोई तकलीफ ना दे। लेकिन जैसे ही दादाजी ने पूछा, अरमान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना, आस्था के दिमाग में अरमान की बातें गूंजने लगी। उसे दादाजी को खुश रखना था और अपने रिश्ते की भनक तक दादाजी को नहीं लगने देनी थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरमान सिंघानिया आस्था के पूरे परिवार को जान से मार देगा। आस्था दादाजी को ये किसी भी कीमत पर पता नहीं लगने चाहती थी। दादाजी की बात सुनकर आस्था मुस्कुराकर बोली, दादाजी, हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अरमान जी भी हमें कुछ नहीं कहते हैं और ना ही ज्यादा रोकते टोकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा वो गुस्से में तेज हैं, लेकिन हम उनसे ज्यादा बात ही नहीं करते तो वो हम पर ज्यादा गुस्सा भी नहीं करते। दादाजी ने आस्था की बात सुनने के बाद उसके सर पर हाथ रख दिया और बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि तुमने अरमान को दिल से अपना लिया है। ये सुनकर आस्था का दिमाग सुन हो गया। वो दादाजी को क्या जवाब देती? थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ वो बोली, दादाजी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम कुछ कह सकते हैं? ये सुनकर दादाजी बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है, क्या कहना है तुम्हें? आस्था बोली, वो जब से हम यहाँ शहर में आए हैं, हम एक बार भी कान्हा जी के मंदिर नहीं गए हैं। हमें आदत है कान्हा जी के मंदिर में दर्शन करने की, तो अगर आप इजाजत दें तो क्या हम कान्हा जी के मंदिर जा सकते हैं? आस्था मन ही मन में सोच रही थी कि शायद उसके कान्हा जी उससे नाराज हो गए हैं, जो हर बार उसे किसी न किसी लफड़े में डाल रहे हैं। उसने अभी तक मंदिर की परिक्रमा पूरी नहीं की थी और ना ही उसने 102 नारियल चढ़ाया था। उसे लग रहा था कि उसने अभी तक अपनी बोली हुई बातें पूरी नहीं की, इसीलिए शायद उसके कान्हा जी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। आस्था को इस तरह से सोचते हुए देखकर दादाजी मुस्कुराकर बोले, अरे बेटा, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है, और ये तुमने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है, बिल्कुल तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि तुम अरवान को भी अपने साथ में मंदिर ले जाओ। क्या? या दादाजी की बात सुनकर आस्था डर गई और घबराकर बोली, नहीं नहीं। आस्था के दो बार नहीं नहीं बोलने पर दादाजी हैरानी से आस्था को देखने लगे। आस्था बोली, वो दादाजी, हमारा मतलब है कि वो तो इतनी ज्यादा बिजी रहते हैं, तो वो मंदिर कैसे जा पाएंगे? हम अकेले चले जाएंगे, आप हमें ड्राइवर के हाथ भेज दीजिएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर दादाजी मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और हाँ, एक और बात, मंदिर से आने के बाद तुम्हें आज मॉल भी जाना होगा, और हम चाहते हैं कि हमारी बहू अपनी पसंद के कपड़े खरीद कर लेकर आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके पास केवल कुछ ही कपड़े हैं और शायद साड़ियां पहन नहीं पा रही हैं, वरना हमने तो प्रियंका के अकॉर्डिंग सारी साड़ियों की शॉपिंग करवाई थी। दादाजी का प्रियंका का नाम लेते ही आस्था थोड़ा हिचकिचा गई, क्योंकि जो कुछ भी आज उसकी जिंदगी में उसे मिला है वो सब प्रियंका का ही था। प्रियंका ही तो इस घर में बहू बनकर आने वाली थी, आस्था इस घर में नहीं आने वाली थी, लेकिन आस्था उस वक्त की शिकार हो गई थी, जिससे उसे मजबूरन यहां रहना पड़ रहा है। आस्था मन ही मन में सोचने लगी, काश प्रियंका दीदी घर से नहीं भागती तो आज शायद वो यहां नहीं होती और खुशी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती और जल्द से जल्द डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा करती। अतीत की यादों में खो गई आस्था की आंखों के किनारे भीग गए। दादाजी ने उसके इमोशंस को नोटिस किया और कहा,
बेटा, हम माफी चाहते हैं, हमने प्रियंका का नाम आपके सामने ले लिया, वो बस हम आपसे ये बताना चाहते थे कि हमें आपकी चॉइस नहीं पता है, आपको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंद से अपने लिए शॉपिंग करें। ठीक है, अब आप फटाफट से तैयार हो जाइए, उसके बाद हम आपको मंदिर खुद लेकर चलेंगे। ये सुनकर आस्था मुस्कुराई और बोली, दादाजी, एक बात, हम तो भूल ही गए, हमें तो अभी नाश्ता भी बनाना था। ध्रुव जी कहकर गए थे कि वो सुबह हमारे हाथों का नाश्ता खाएंगे, तो फिलहाल हमें किचन में जाना होगा। आस्था किचन की ओर चली गई। दादाजी आस्था को मुस्कुराकर देखते रहे और फिर उनका चेहरा एकदम सपाट हो गया। वो मन ही मन बोले, बेटी, चाहे तुम जुबान से कुछ मत बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तुम यहां बिल्कुल भी खुश नहीं हो और इस घर में तुम एक कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही हो। आस्था ने प्यार से सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। शीघ्र ही उसने गर्मा गर्म आलू के पराठे, पोहा, सूखी सब्जी और पूरी बना दी थी, क्योंकि ये आस्था का फेवरेट नाश्ता था। थोड़ी ही देर में चारों वहां पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, आस्था के बनाए हुए खाने की खुशबू उन चारों की नाक से जा टकराई। आहान चहक कर बोला, ओ माई गॉड, क्या खुशबू है, क्या ये हमारा ही घर है? वो आस्था के बनाए हुए खाने की खुशबू को सूंघता हुआ अंदर आ रहा था। उसके पीछे पीछे बाकी तीनों भी थे और वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। यार, आहान तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लगता है भाभी ने आज कुछ स्पेशल बनाया है हम लोगों के लिए, चलो फटाफट से डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। वे लोग डाइनिंग टेबल पर गए और देखा कि आस्था उनके लिए नाश्ता लगा रही थी। आस्था को देखकर वे चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि पहली बार उन्हें इस तरह का देसी खाना, घर का बना हुआ खाना मिल रहा था, स्पेशली घर की लेडीज के हाथों का बना हुआ खाना। घर में शेफ भी खाना बनाया करते थे, लेकिन जो स्वाद घर की लेडीज के हाथों में था उसका कोई मुकाबला नहीं था। वे लोग जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए और आस्था से बोले, भाभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आपने? आहान का सवाल सुनते ही आस्था चहक कर बोली, आहान जी, हमने आज आलू पराठे, सब्जी और पूरी बनाई है, हमें लगता है कि वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप जानते हैं, जब हम गांव में रहते थे ना, तब तो ये हमारा फेवरेट खाना था, और आपको पता है, हम फटाफट से सारा खाना चटकर जाया करते थे। आस्था की मुस्कुराकर ये सब कहने पर वे सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर दादाजी बोले, अरे सुमित, ये अरमान कहाँ रह गया, जरा देख कर आओ और उसे बुलाकर लेकर आओ, वो भी हमारे साथ नाश्ता कर लेगा। दादाजी ने जैसे ही अरमान का नाम लिया, आस्था की जान हलक में आ गई और हल्की सी कपकपाहट उसके हाथों में आ गई। वो सोचने लगी, क्या वो भी यहाँ आकर नाश्ता करेंगे।